زندگی میں غور کرتے ہیں اتنا ہم اللہ کی مہربانیوں کو درک کرتے ہیں. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے اس فرض عزا کے توسط سے مجالس سے حسین علیہ السلام کے وسیلے سے ہم اپنے خدا سے اپنے رب سے نزدیک. امام علی مقام دعائے عرفہ میں بہت خوبصورت جملہ معروف جملہ ہے حسین علیہ السلام کا, پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا, اور جس نے تجھے نہ پایا اس نے کچھ نہیں پایا. ہم اس پر شرا پر اپنے رب کو پانے آتے ہیں, حسین کے وسیلے سے خدا تک پہنچنے آتے ہیں. وہ امام حسین, وہ سید الشہداء جن کو پروردگار عالم نے نفس مطمئنہ سے پہچن والا. قرآن کریم سورہ فجر کی 27-28 آیا کریمہ, اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نفس سے مطمئنہ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف, اس حال میں کہ تم خدا سے راضی ہو, خدا تم سے راضی ہو, بس میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو. جنت سے پہلے اللہ نے بندگی کا ذکر کیا ہے. بندگی کے دائرے میں آنا انسان کا شرف اور کمال, انسان کی عظمت ہے کہ خدا کا بندہ بن جائے, خدا کا غلام بن جائے. یہ کہے کہ اللہ تو جو کہتا ہے کہ وہ کروں گا. غلام اور آقا کی کیا مثال ہے کہ غلام اپنے آقا کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے. غلام اپنے آقا کی ہر بات کو مانتا ہے, اطاعت کرتا ہے, جہاں آقا کہتا ہے وہاں بیٹھتا ہے, جس چیز سے آقا منع کرتا ہے اس کو انجام نہیں دیتا. آقا کی خوشنودی میں اس کی زندگی کا مقصد. بندہ اللہ کا بندہ وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کا جذبہ پیدا کرے. حسین نے اپنے رب کے لیے سب کچھ لٹا دیا. ہم اور آپ بھی فرش عزا سے کربلا سے ایسا جذبہ پیدا کریں اپنے خدا کے لیے, اپنے دین کے لیے قربانیاں دینا. یہاں سے دین کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کرنا سیکھیں. ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا. سب سے پہلی بات یہ آتی خدا و سلطان ہم سے چاہتا کیا. امام حسین علیہ السلام سے کربلا میں جانا چاہا تھا. امام حسین علیہ السلام سے اللہ نے یہ چاہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو, اپنی بیوی کو, بہنوں کو, بچوں کو, سب کو لے کر کربلا میں آنا. جنگ لڑے یزید سے, یزید کے ساتھیوں سے امام علیہ السلام نے کہا. اب آج 1431 ہجری میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ لشکر حسین علیہ السلام کا ثواب حاصل کر, کیونکہ جو زیارت پڑھتا ہے, جو زیارت کر جاتا ہے, حتیٰ جو عزاداری میں مختلف کام کیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں ثواب بتایا. یہ جو ہم یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں, الحمدللہ اس سال آپ لوگوں نے احساس کیا ہوگا کہ جماعت مارگاہ میں پچھلے سال کی نسبت کافی بہتری آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چند لوگوں نے قدم اٹھایا اور اسلام کو سنبھالا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے فرض عزا کو مددگار کر کے کوئی کام انجام دیں. جب تحرک انسانوں کے اندر پیدا ہوتا ہے تو نتیجہ نکلتا ہے, ثمرا آتا ہے, فروٹ ملتا ہے. ہم جب محنت کریں گے ہستو حرکت ازما برکت, اللہ کہتا ہے تم حرکت کرو برکت ہماری طرف. جب ہم حرکت کریں گے, کوئی کام کریں گے, تو خود بخود پروردگار عالم ہمارے لیے راہیں کھولے. یہ شرط یہ کہ ہم حرکت تو کر کے دیکھنا, ہم کام تو کریں. جب ہم نے کام کیا, چند لوگ مل جائیں, اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. فرد واحد کی کوئی حیثیت, اجتماع کی حیثیت, اتحاد کی حیثیت. جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں, چند ایک ہی ہو, قلیل گروہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے قلیل ہو, جب چند لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بہت زیادہ نکلتا. اس لیے مومنین کو اور مومنات کو چاہیے کہ وہ ایمان کے رشتے کو سب سے مضبوط رشتہ سمجھیں. اگر ہماری کوئی مومنہ بہن ہے جو مولا جی کی چاہنے والی ہے, امام زمانہ کا نام لینے والے ہیں, زیارت پڑھنے والے ہیں, محمد و آل محمد ہوگا. اگر کوئی مومن ہے اس کو دوسرے مومن سے محبت ہونی چاہیے. ایمان کا رشتہ دوسرے ایمان کے رشتے کو کھینچتا ہے. محبت کا جذبہ ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی متقی شخص ہے, پرہیزگار شخص ہے, اس کے لیے آپ کے دل میں محبت ہونی چاہیے, کیونکہ وہ آپ کے مولا کا محب, آپ کے مولا سے محبت رکھنے والا ہے, ان کا چاہنے والا ہے. ممکن ہے امام حسین کی نظر میں اس کا عظیم مرتبہ ہو, اس کی پاکیزگی کی وجہ سے, اس کی امام حسین علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے, اس کے ذکر امام میں شرکت کی وجہ سے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے محبت کریں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اہل ایمان سے محبت رکھنے والے. دوسروں سے حسد کرنا, بغض رکھنا, کینہ رکھنا, کسی کا دل میں میل رکھنا, یہ سبب بنتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور. اس لیے کہا گیا کہ درگزر کرو. چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں, ہر جگہ ہوتی ہیں, ان باتوں سے چشم پوشی کر, نظر انداز کر, اور محبتوں کو دل میں جگا دے, نفرتوں کو جگا دے. نفرت کا کوئی واقعہ بھی ہوتا ہے, کوئی سبب پیدا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے وہ یاد مٹا دے. خدا و تعالیٰ ایسی یادوں کو دل سے مٹا دیتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں, تاکہ ہم اپنے دل کو پاکیزہ رکھیں, بات صفا رکھیں, اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے رکاوٹیں پیدا نہ ہوں. درود بھیجے گا محمد والے. ایک دفعہ اذان کا انتظار کر چکے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, تو بار بار جو ہے وہ انتظار کرنا ممکن نہیں ہے. آئندہ کی مجالس میں بھی اذان کے ساتھ اپنی مجلس کو ان شاء اللہ جاری رکھیں گے. درود بھیجے گا محمد والے. جاتی کے موضوع سخن ان مجالس کا, اشرہ مجالس کا, کربلا اور خواتین کا کردار. پہلے دن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کربلا میں کیا ہوا, کیوں کربلا رونما ہوئی, کربلا کے اچھے کردار کون سے تھے, کربلا کے برے کردار کون سے تھے, کربلا میں کون سی ایسی وجوہات تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا. ساری باتیں ان مجالس میں ذکر ہوں گی. امام حسین علیہ السلام نے کہاں پر کیا خطبہ دیا, کیا خط لکھا, امام کے خطوط میں کیا تھا, امام نے کیا فرمایا, یہ چیزیں جو کہ خطبات امام حسین مدینہ سے مکہ تک, ایک کتاب ہے محمد صادق نجمی صاحب کی جو ترجمہ ہو چکی ہے, اس کتاب کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, اور بہت ساری دوسری کتابوں میں آپ کو متفرق مل جائے, لیکن یہ کتاب جتنی خوبصورت اس موضوع کے اوپر لکھی گئی اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی, اس وجہ سے بہترین چیز کا حوالہ آپ کے سامنے ہے. اور خواتین کا کردار جو ہے وہ خواتین کربلا میں نہیں ہیں, یعنی وہ خواتین جو کربلا میں تھیں ان سے ہمیں زیادہ غرض نہیں ہے, جتنی ابھی اس وقت موجودہ زمانے میں خواتین ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے. کربلا میں جو خواتین تھیں ان کا تھوڑا ذکر ہے, لیکن فوکس ہمارا وہ خواتین نہیں. ہمیں کیا کرنا ہے یہ اہم بات. کربلا زندہ ہے, کربلا آج زندہ ہے, ہمیں پکار رہی ہے صدائے حل میں ناصر ینصرنا, حل میں مغیثن یغیثنا. ہر زمین زمین کربلا ہے, ہر روز روز عاشورہ ہے. اس کا کیا مطلب, ہم کیا کر سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی بنے. اس پر سے عزا کے ہر کام کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی خاطر کسی عزادار کو پانی پلاتا ہے, یقین رکھنا بہت ضروری ہے, جو سن رہے ہیں اس کے اوپر یقین رکھے, عقیدہ رکھے. کوئی اگر اللہ کی خاطر امام حسین علیہ السلام کی محبت میں, امام کی خاطر, خدا کی خاطر خوشنودی ہے, خدا کو قرض کرنے کے لیے خلوص کے ساتھ کسی عزادار کو پانی پلاتا ہے, اس کا ثواب اتنا ہے گویا اس نے لشکر امام حسین علیہ السلام کے پیاسوں کو پانی پلایا. جیسے کہ جناب سکینہ کی پیاس کا تصور کریں, 3 दिन के प्यासों का तसव्वुर करे और उसको कोई जाकर पानी पिला दे, बिल्कुल उतना ही सवाब अदादार है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पानी पिलाने। यहाँ पर जो आकर आप काम कर रही हैं या सुन रही हैं, इसकी बहुत अहमियत, फर्ज़ अदा पर आना ही बड़ी इबादत है। लेकिन जब हम किसी काम के मकसद को समझते नहीं, किसी काम के हदफ को समझते नहीं, हमें उसकी अहमियत का एहसास नहीं होगा, तो सवाब भी पहुंच हो जाता है। सवाब उसी वक्त मिलता है जब हम नियत करें। तो आपने पूरा वजू कर लिया, वजू की नियत नहीं की, आपको सवाब नहीं मिलेगा, दवाब भी बातिल हो जाएगी अगर नियत ही नहीं। ऐसे ही आपने गुसल कर लिया बगैर नियत के, नहाकर बाहर आने नियत नहीं की, गुसल कर सवाब पर्ची अजा पर आने से पहले अपनी नियत को खालिश करें कि हम कहाँ आकर बैठे। जब आप यहाँ आएंगे खुलू से नियत के साथ और बावजू होकर आए, ताकि यहाँ से पूरा फैज लेकर हम इबादत करने आ रहे, जैसे नमाज के लिए बावजू होकर जाते हैं, कोशिश करें अपनी जिंदगी में हर वक्त बावजू रहें, खुसूस मजलिस से आने से पहले वजू कर, ताकि आपकी ये इबादत आपके लिए बरकत और समरात का सबब हो। कल तक जो मबाहिस हुई थी तारीख करबला के हवाले से, उसमें आपके सामने करबला का एक किरदार, ऐसा किरदार दुश्मनान इस्लाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत और यावरी न करने वाला एक किरदार अब्दुल्लाह इब्ने उमर का जिक्र किया था, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ये तो कहा कि मैंने रसूल अल्लाह से सुना है कि आप मारे जाएंगे, हुसैन मारे जाएंगे, और जो हुसैन की नुसरत नहीं करेगा वो जलील और ख्वार। लेकिन जब इमाम अली मकाम ने कहा कि मेरी मदद करो, खुदा से डरो, तो पीछे हट गए, गिरिया भी किया, ईमान को बोसा भी दिया, ईमान को अलविदा भी किया, मोहब्बत का इजहार भी कर रहे और मदद भी नहीं किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम्हें हदीस रसूल जो सुनाई है और करना चाहिए, हदीस रसूल क्या कह रही है, नुसरत नहीं करोगे तो जलील हो जाओगे, बस खुदा का खौफ करो, हमारी नुसरत करो। इस अब्दुल्लाह इब्ने उमर को किस तरह से हदीस का मिजाज नजर आया, अब्दुल्लाह इब्ने उमर किस हद तक तनाजुल करते, कहां तक जलील और रुसवा होते, इन्होंने यजीद की भी बैत की, हज्जाज इब्ने उमर सकफी, हज्जाज इब्ने यूसुफ सकफी, कौन शख्स था, वो शख्स था हज्जाज जिसने खाने काबा को जलाया था, खाने काबा के ऊपर हमला किया था, खाने काबा के ऊपर जुल्म किया था, शियों के ऊपर अहले बैत के चाहने वालों को कत्ल किया था, मजालिम अल्लाह के घर के ऊपर भी और मोमिनीन के ऊपर, हर तरह का जुल्म हज्जाज, जैसे यजीद था ऐसे हज्जाज। जब वो खलीफा बनाया तो अब्दुल्लाह इब्ने उमर उसके पास गए और रात का वक्त था, वो उसके बिस्तर पर इस्तराहत कर, अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने उससे कहा कि मैंने हदीस रसूल सुनी हुई है कि जो वक्त के इमाम को नहीं पहचानता, जमाने के इमाम को नहीं पहचानता, वो जाहिलियत की मौत मरता है, मैं चाहता हूँ कि आपकी बैत करो। हज्जाज ने कहा कि अभी तो रात का वक्त है, सुबह के वक्त में आना, मेरे इस्तराहत का टाइम है। उसने कहा कि क्या खबर कल जिंदा भी रहूं या नहीं, अगर मौत आ गई तो मैं जाहिलियत की मौत मर जाऊंगा। मारिफत क्या है ये समझना बहुत अहम, मार्फत है इमाम जमाना, लफ्ज बहुत आसान कि इमाम की मार्फत, इमाम की मार्फत, क्या हज्जाज को इमाम की मार्फत थी, नहीं थी, और हज्जाज के जैसे अब्दुल्लाह इब्ने उमर को इमाम की मार्फत थी, इन सब में से किसी को इमाम की मार्फत नहीं, लेकिन कह दे रहे हैं कि हम इमाम की मार्फत कर रहे। कौन है इमाम, वो जो खलीफतुल मुस्लिम। जब हज्जाज ने ये बात सुनी तो हज्जाज भी जानता था कि ये किस तरह का इंसान, बहुत सारे मुनाफिक ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को पहचान रहे होते, बहुत सारे गुनाहकार बदकार लोग ऐसे होते हैं एक दूसरे के साथ बस मुदारा कर रहे, हर आदमी अपने मसले और मनसब के चक्कर में। उसने कहा कि तुम रात का वक्त मैं इस्तराहत करो, हाथ बाहर नहीं निकाल सकता, अपना पैर आगे कर, तुम पैर चूम के मेरी बैत करो, और अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने उसका पैर भी चूम। इतना इंसान जलील रुस्वा हो जाता है अगर अहले बैत के दर से हट जाए, अगर इमामत के मनसब को ना पहचान, अगर इमाम बरहक की अताअत ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ शहरों में खुतूत भी लिखे, इस किताब में मक्तूबात यानी क्या क्या इमाम ने चीजें लिखी, बसरे के लोगों के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खत लिखा था, बसरे के लोगों ने मुख्तलिफ वक्तों में अपनी इजहार मोहब्बत की है अहले बैत से, मतलब पहले के जमाने में जो जंगियों में बसरा से आने वाले लोग, वहां पर भी अहले बैत से आने वाले जैसे कूफा में थे इस तरह बसरे में। बसरा में इमाम ने जो खत लिखा उसको मजमून आपके सामने आज पेश कर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने हर खत की इब्तिदा में और अपने हर खुतबे में तवज्जो कीजिएगा, जहां कहीं इमाम को खुतबा पढ़े कोई मकतूब पढ़े, इमाम ने सही जनवाया कि मैं कौन हूं, मेरी हैसियत को समझो। अपने हसब और नसब को सिर्फ खानदानी वजाहत के जाहिर के लिए नहीं बताया, बल्कि क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताल्लुक नबूवत और रसालत से था, इसके इमाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबूवत और रसालत की वजह से शरफ और अजमत बख्शी, और आज उनके आल में से मैं बाकी हूं। नबी अकरम को अल्लाह ने नबूवत की वजह से शरफ बख्शा था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इमामत की वजह से शरफ बख्शा। हम कौन है ये बताया, अपना तारुफ करवा। हमारा हक हाँ इमामत और खिलाफत का, मनसब खिलाफत, लोगों के उमूर की जिम्मेदारी संभालना, लोगों के ऊपर हुकूमत करना, ये अल्लाह के अंबिया और आइम्मा का हक होता है। जो हक गस्ब हो गया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी, इमाम के भाई का भी, इमाम के पिता ग्रामी हजरत अली अलैहिस्सलाम का, यह हक कब से गस्ब हो रहा है, 40 हिजरा में हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई और उससे पहले से ये हक गस्ब हो रहा है, कब से, 11 हिजरा से, जब से रसूलल्लाह की विलत, नबी अकरम इस दुनिया से गए, हजरत अली अलैहिस्सलाम का हक गस्ब हो रहा है। जब से लोगों ने ये भुला दिया था कि रसूल अल्लाह ने गदीर कुम में क्या कहा था, मन कुल तो मौला फहाजा अली मौला, दुरूद भेजेगा
अल्लाह
इमाम ने फरमाया कि जिस जमाने में तुम रह रहे हो आंखें खोल के रहो, कान खोल के रहो, देखो इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, इस वक्त हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, जो बेहतरीन खलाए हैं, जो अल्लाह के नुमाइंदे थे, अल्लाह के जानशीन। और इमाम फरमाते हैं कि हम इस जुल्म पर सब्र करते रहे, हजरत अली ने 25 साल सब्र किया, इमाम हसन ने सब्र किया, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत 50 हिजरा में हुई है, करबला का वाकया 61 हिजरा में, 10 साल तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी सब्र किया। क्यों सब्र किया, क्यों जंग नहीं लड़ी, इमाम फरमाते उम्मत में इख्तलाफ और सफर के न होने की खातिर, उम्मत को मसलहत नहीं थी, उम्मत के लिए मनफियत नहीं थी, मुनासिब नहीं था कि इमाम जंग लड़ते, इस वजह से इमाम ने इस्लाम के मसाले को देखते हुए, इस्लाम की मसलहतों को देखते हुए, इस्लाम की खातिर जंग नहीं की। इमाम ने फरमाया कि सब्र किया इस जुल्म को, खवातीन कराम बहुत मुश्किल बात नहीं कर रही, आप लोगों की तवज्जो इधर उधर हो, जरा सा तारीख को भी सुने, कुछ सकील बात सुनने की भी बहुत मैं सोचती हूँ कि आसान और बहुत ज्यादा वजाहत के साथ बताऊं, इसलिए आसान अल्फाज में वजाहत कर करके मैं आपके सामने थोड़ा थोड़ा सा रोजाना बजाऊ, ताकि करबला की तारीख हमारे बहनों में दोबारा से ले जा। इमाम ने जो बसरे में खत लिखा उसमें लोगों को ये आजाद दिया कि मैं कौन हूँ, और आज के दौर में हो क्या रहा है, आज के दौर में हम पर जुल्म हो रहा है, ये जुल्म अभी से नहीं हो रहा, बल्कि ये जुल्म कदीमी हो चुका, उस वक्त क्याम नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं थी, अब क्याम की जरूरत है। ये वो वक्त है जिसमें सुन्नतें पामाल हो रही हैं और बिदतें बुरूज कर, बिदतें जाहिर हो रही, सुन्नत क्या थी रसूल अल्लाह की, कि इमाम का हक हो, इमाम लोगों से खिताब करें, आइम्मा को यह हक नहीं था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत अली अलैहिस्सलाम ने भी हत्ता यह हक गस्ब कर दिया कि लोगों से वो खिताब कर, लोगों को एड्रेस करने का काम बनु उमैया खुद कर रहे, मेंबरों से हजरत अली अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह सबको शितम किया जा रहा था, अहले बैत के खिलाफ हदीसें गढ़ी जा रही थी, सारे काम हो रहे, और मुआविया के बाद यजीद जो काम करने जा रहा था उसमें सुन्नतें बिल्कुल पामाल हो रही थी, कि शराब भी पी जा रही है, जुआ भी खेला जा रहा है, अलल ऐलान जो कुछ यजीद कर रहे हैं वो अब इस्लाम समझा जाए, क्योंकि यजीद के साथ जो टाइटल था वो खलीफा था, उसने भी कर। इमाम ने फरमाया अगर तुम मेरी दावत पर लबैक कहोगे तो मैं तुम्हारी हिदायत, इस खत में हमें एक मैसेज मिलता है, कि जब तक उम्मत लबैक नहीं कहती इमाम अपना काम नहीं करता। कुछ हक उम्मत का इमाम की गर्दन पर है और कुछ हक इमाम का उम्मत की गर्दन। उम्मत की गर्दन पर इमाम का हक ये है कि इमाम की दावत पर लबैक, इमाम की अताअत के लिए अपने सरों को झुका। बसरे वाले अगर इस काबिल होते कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बातों को मनो अन कबूल करते और आ जाते सब, सब नहीं आए। कूफे वाले इस काबिल होते कि इमाम की सदा पर लबैक कहते, इमाम की हर बात को मानते, नहीं आए कूफे वाले लोग। नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर मजलूमियत के साथ शहीद हुए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर मजलूमियत के साथ बेदर्दी के साथ शहीद हुए तो उसकी जिम्मेदार उम्मती, तो उम्मती मुत्तहिद हो जाते, उनके अंदर शजाअत होती, उनके अंदर ईमान होता, उनके अंदर जज्बा होता, वो बामार्फत होते, मोहब्बत दुनिया कम होती, उन्होंने हलाल गजा खाई हुई होती, हलाल गजा से परवान चढ़ होते, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद करते। और हमेशा हर इमाम के साथ यही जरूरत, लोगों ने इमाम का साथ, इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया, बाकी आइमा का भी साथ नहीं दिया। अब भी उम्मत साथ नहीं दे रही इमामत, इमामत के साथ जुल्म किया है, इमामत के साथ जुल्म हुआ। 11 इमाम अल्लाह ने भेजे, सब इस दुनिया से मजलूमियत के साथ या तलवार से या जहर से शहीद होकर चले, लोगों ने फायदा नहीं उठाया इमाम, इमाम को समझा नहीं, इमाम की मार्फत ही नहीं हासिल की। उस जमाने में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मार्फत नहीं हासिल की गई, आज भी इमाम हुसैन के फर्जंद इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला हम हक तलफी करते अपने वक्त के इमाम के हक में, हक नहीं अदा कर रहे। अगर हम अपने इमाम के हकूक अदा कर रहे होते, इमाम को सच्चे दिल से पुकार रहे होते, अपने इमाम के गायब होने को समझ रहे होते, हमारे साथ ये ज्यादती है, जुल्म है, सजा है, तो हम तड़प तड़प कर पुकार। इमाम फरमाते अगर तुम मुझे तड़प तड़प कर याद करो, बुलाओ तो दूर हो जाएगा। सोचे हम में से कितने ऐसे हैं जो हर रोज सुबह उठते हैं और इमाम को सलाम भी करते हैं, इमाम से तजदीद बैत भी करते हैं, मौला हम आपको इमाम मानते हैं, मौला वहां पर सलाम है। कितने ऐसे हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम करते हैं रोजाना सुबह उठकर या दिन में किसी एक मरतबा। अगर हमारी जिंदगी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ना नहीं है, अगर हमारी जिंदगी में दुआए अहद पढ़ना नहीं है, इमाम ज़माना के लिए दुआ मांगना, इमाम के ज़ुहूर की तारीफ के लिए दुआ मांगना, का मतलब है कि हम इमाम को मुंतज़िर नहीं है, हम इमाम का हक ज़ाया कर। अगर हम अपनी जिंदगी में इमाम की सलामती के लिए सदका नहीं निकाल रहे, इमाम की खुशनूदी के लिए कुछ नहीं कर रहे, ना अमल कर रहे, ना पैसा निकाल रहे, खुम्स बजा नहीं ला रहे, नमाजें नहीं पढ़ रहे, और वो गुनाह कर रहे हैं जो बदतरीन गुनाह है, घरों में केबल लगे हुए हैं, खवातीन जो गैदरिंग अटेंड करती हैं वो मिक्स गैदरिंग है, बच्चे हमारे गाने गा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गुनाह का बाजार गर्म है, तो हमने इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए क्या किया? इमाम ज़माना के ज़ुहूर का अगर इंतजार है तो इंतजार में अमल है, झूठ है अगर हम ज़बान से कहते हैं हम इंतजार कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, झूठ ना बोले, सच बोले। हम कह वाकई में मुंतजर नहीं हैं। मैं सोचती हूँ हमें हक नहीं ये कहने का कि हम मुंतजर हैं अगर हम अमल नहीं, अमल से इंतजार, अपने अमल को दुरुस्त करें ताकि इमाम का जहूर, अमल में हमारे तहरीक आनी चाहिए। चार दिन से आपके सामने खवातीन की जिम्मेदारियां बता रहे कि हम खवातीन सबसे ज्यादा अपने घर के ऊपर तवज्जो, जनाब सैयदा को अपना रोल मॉडल बनाए। सबसे अहम बात जिसका हम दावा करते हैं कि हमने बीवी सैयदा को अपने लिए नमूना अमल बनाया, तो मैं कहूंगी ये भी झूठ। नमूना अमल हम कहते हैं बीवी सैयदा को बनाया कि जब हम जिंदगियों को देख रहे होते तो उसमें जनाब सैयदा का कोई रंग, कोई पहलू, कोई झलक नजर ही नहीं आती। बीवी सैयदा सलाम अल्लाह ने क्या फरमाया, औरत अल्लाह से सबसे ज्यादा उस वक्त करीब, सबसे ज्यादा उस वक्त खुदा बंदे उतार के नजदीक होती है जब अपने घर के कामों में, अपने शौहर की खिदमत में, अपने बच्चों की खिदमत में मसरूफ अमल हो। کتنی خواتین ایسی ہیں جو اپنے گھریلو کام کاج کو عبادت سمجھ کر انجام دیتی ہیں، کتنی خواتین ایسی ہیں جو اپنے گھریلو کام کاج کو عشق سمجھ کے انجام دیتی ہیں۔ یہ ہماری محبت اور عشق کا محور ہونا چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ اور علم کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ یہ کام اتنا آسان نہیں، اگر ہمیں ایک ڈائیگرام بھی بنانا ہوتا ہے آپ نے تھوڑا سا ادھر ادھر کر دیا، آپ کا کام خراب۔ بچے نے ذرا سی غلطیاں کر دی تو اس لیے جو کام کرنا تھا وہ خراب۔ اب بچے پال لیں ہم، سارے کام کر لیں بغیر علم کے، نمازیں پڑھ لیں بغیر علم کے، وضو کر لیں بغیر علم کے، مجالس میں آ جائیں جس کی بھی مل جائے بیٹھ کے سن لیں گے، جو بھی سنا دیں سن لیں گے، غلط بھی پڑھ کے چلا جائے گا تو بھی خاموش رہیں گے، طلب نہیں کریں گے کہ صحیح پڑھنے والوں کو لے کر آئے تھے۔ ذمہ داری ادا کر، ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے کان آنکھ سب کچھ کھلے ہونے چاہیے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ امر بالمعروف نہیں ہے بول کر آپ جہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں، اگر کوئی غلط پڑھنے والا ہے کیسے پڑھ کر چلا گیا، اب آپ کی جہالت سے فائدہ ہوتا، کسی کو کچھ نہیں پتا، پتہ ہے یا لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، کتابیں تو اٹھا کر کوئی پڑھتے ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے۔ اتنا بیوقوف بنایا جاتا ہے لوگوں کو کہ کہہ کر چلے جاتے ہیں جس قرآن میں، جس کا وجود قرآن میں نہیں ہوتا، اتنا لوگوں سے کہہ دیا جاتا ہے لوگ سن کر خاموش ہو کر بیٹھ جائے، اتنا عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، غلط حدیثیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں جن کا کتاب میں کوئی کہیں ذکر نہیں ہے۔ کربلا کا واقعہ اصلی کتابیں جا کر پڑھ، اگر میں کوئی روایت نہیں پڑھتی، کوئی آ کر مجھ سے بحث کرتا ہے، میں اس سے کہتی ہوں کتابوں میں چیز نہیں، یا فلاں جس کتاب میں ہے اس لیے میں نے پڑھا، جیسے ہم نے بھی یہ سنا ہے ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں۔ سننے کی عادت زیادہ ہے، تحقیق کی عادت کسی کو، کتابوں سے محبت نہیں۔ اگر خواتین کتاب پڑھتی بھی ہیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہ میٹر پڑھا جاتا ہے جو ہمارے اخلاق کو برباد کرتا ہے، وہ مواد آپ پڑھ رہی ہیں جس سے ہماری تعمیر نہیں ہونی بلکہ بربادی ہونی ہے۔ ٹی وی دیکھ رہی ہیں آپ، وہ چینلز دیکھ رہی ہیں جس میں آپ کی اخلاق کی تعمیر نہیں ہو رہی بلکہ بربادی ہو۔ بہت بڑا المیہ اس وقت ہمارے یہاں انڈین چینلز، انڈین چینلز مصیبت ہے آپ خواتین کے لیے۔ اگر آپ امام زمانہ کی منتظر ہیں، خدا کے لیے یہ چینلز نہ خود دیکھیں نہ بچوں کو دکھائیں، آپ کے معصوم معصوم بچے خصوصاً بچیاں ان چینلز کی وجہ سے برباد ہو رہی ہیں۔ اپنے گھر پہ پابندی لگائیں یہ چینلز نہیں چلے، اور مجھے یقین ہے میں وسوخ کے ساتھ کہہ رہی ہوں، ایسی جو ہے وہ بیٹھ کر یا بول نہیں رہی، مجھے بہت زیادہ علم ہے اس بات کا کہ اکثر گھروں میں ہمارے شیعہ گھروں میں انڈین چینل بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں، لوگ پوری پوری رات بیٹھ کر دیکھتے ہیں، پورا پورا دن دیکھتے ہیں، اور ٹی وی کی وجہ سے لوگوں کی نماز فجر قضا ہو جائے، ان کو عادت ہے رات کو بیٹھ کر فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کی، اور فجر کی نماز نہیں پڑھتی، اوقات ہمارے خراب ہوتے، وقت کی برکتیں چلی گئی، جو اسلام نے ہمیں شیڈیول بنا کر دیا تھا اس کے اوپر ہم عمل نہیں کر، جو دین نے ہمیں بتایا تھا کہ صبح فجر کی نماز پڑھو، اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، قیلولے کا وقت ہے، بعض گھروں میں کھانا رات کو 7 بجے کھایا جاتا ہے، دوپہر کا کھانا رات کو 7 بجے کھا رہے ہیں، پھر پوچھیں آپ رات کا کھانا کب کھاتے ہیں، وہ 1-2 بجے رات کو کھاتے ہیں، اور فخر سے لوگ بتاتے ہیں مزے کی ٹھاٹ کی زندگی گزارتے، جس میں 4-4 بجے سوتے ہیں فجر کے بعد، پتا ہوتا۔ یہ نظام زندگی جس کو اسلام نے نہیں دیا، جیسا اسلام نے ہمیں دیا، اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں ہماری صحتیں درست ہو جائیں، صحتیں خراب ہو رہی ہیں لوگ، جب آپ کے جسم میں جان ہی نہیں ہے تو ہم کام کیا کریں، اپنے جسم کو بھی درست رکھیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے طاقتور تنومند صحت مند اچھے ذہن کے ساتھ کام کریں، خواتین کو چاہیے وہ اپنا خیال رکھیں، آپ اپنا خیال خود رکھیں، اپنی صحت کا بھی، اپنے گھر والوں کی صحت کا بھی۔ جب اتنا نظام زندگی خراب ہو جائے گا گھر کیسے چلے گا؟ میں ان باتوں کے اوپر ضرور اپنی مجالس میں کہتی ہوں، تم میرے خیال سے ہر چیز ایک دوسرے سے پیوستہ ہو۔ جب آپ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گی آپ بدبختی وہیں سے شروع ہوگی، جب ہم نے فجر کے بعد دعائیں عہد نہیں پڑھی ہماری بدبختی وہیں سے شروع ہو گئی۔ آپ دیکھیے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان سے پوچھیے، اگر ایک دن نماز نہیں پڑھتے اس دن میں اور باقی دن میں کتنا فرق ہوتا ہے، اس دن میں جس دن ہمیں توفیق نہیں ملتی، اور یہ توفیق جو صاحبان ہیں اہل نماز ہیں ان کو اگر ایک دن کی نماز قضا ہو جاتی ہے توفیق نہیں ملتی، اس کی وجہ بھی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، तो उससे पहले वाली रात में आपने ऐसी शादी अटेंड की है जिसमें हराम खाना भी खाया है, जिसमें ना महरमों के दरमियान बैठकर गाने भी सुने, गलत गुनाह सारे काम करके आप आइए, सुबह की नमाज फजर सजा। ये पूरा सिस्टम इज्तमा ऐसा मुआशरा इमाम देख रहे हैं, इमाम नहीं देख रहे, हम सोचते हैं हमारे इमाम देख रहे। अगर अपने इमाम को हम देख रहे होते कि इमाम देख रहे, तो सोचिए हम इमाम के सामने ऐसे काम करते। जिसके दिल में इमाम का खौफ है, जिसके दिल में इमाम का हुजूर है, वो इमाम के सामने इमाम की मौजूदगी में ये सब गुनाह करे। खुसूसन ये मजालिस से अज़ा हमारी ऐसी हो रही थी जिसमें हमें पता चले कि हमें सवा दो महीने में करना क्या। इन मजालिस में ऐसा मैटर दिया जाना चाहिए जिससे हमारी इस्लाह नफ्स आपके सामने पहले दिन दुआए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अकरम ने अल्लाह ताला से तीन चीजों को पहले दिन तलब किया। मुहर्रम का महीना, इस्लामी महीने का आगाज, साल का आगाज, पहले दिन जिस चीज को तलब किया रसूल अल्लाह ने वो पूरे साल के लिए दुआएं। और हकीकत है कि इन तीन पॉइंट्स में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अगर आप ये तीन पॉइंट्स ही इन दस मजलिसों से उठाकर ले जाइए और पूरे साल इसके बारे में सोचें और अमल करने की कोशिश, तब भी आपको बहुत फायदा। पहला मुद्दा है कि परवरदिगार इस साल में हमें शैतान के वसवसों से महफूज रखता है। तो पहले दिन मैंने आपसे कहा, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, कि शैतान अजादारी में भी आएगा। शैतान और शैतान के चाहने वाले, शैतान के साथी अजादारी को मिटा नहीं सकते, लेकिन अजादारी की रूह को खराब कर सकते। जो हमें फायदा अजादारी से मिलना है उसको खत्म कर सकते। कि हम बस रोने में लगे रहे, मातम करने में लगे रहे, पीटने में लगे रहे, और ढाई बजे मजलिसें हो, ढाई बजे मजलिसों के खाने हो, चार बजे हम रक्त खौफ में चले जाए, नमाज फजर कज़ा हो, ये कैसा मजलिसों का अंदाज। शुरू से बहुत माजरत से उन खवातीन से जो मजलिस को और नमाज को हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लड़वाती थी। अगर कोई मोमिना ये कह दे कि भाई नमाज का वक्त है, उन्हें बहुत बुरा लगता है। नमाज की आजकल कोई अहमियत नहीं, मजलिस की कजा नहीं होती, नमाज की तो कजा होती। नमाज की क्या वैल्यू है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजलिस के मुकाबले नमाज लेकर आते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमसे ये नहीं चाहिए शैतानी वसवसे। तो गमे हुसैन के वो लोग जो इबादत से दीन से कोई ताल्लुक नहीं रखते किरदार अदा कर, ऐसा किरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए पसंदीदा। इमाम चाहते बा अमल लोग मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में घिरिया। हम नमाज वक्त पर पढ़ सजा कर दिया है, यहाँ मस्जिद खत्म हो मगरिब से पहले, ऐसा ना हो गाने भी हो रही है, मातम भी हो रही। ये वसवसाए शैतानी हमें पूरे सवा दो महीने नजर आ, मजलिसों के लिए झूठ बोले जा रहे, ये वसवसा है शैतान। आप इमाम हुसैन की खातिर काम करें तो कम अज कम इतना तो ख्याल रखें कि मजलिस की खातिर झूठ ना बोले, मजलिस के मामले में झूठ ना बोले। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए काम कर रहे हैं तो हलाल रिस्क से तबर्रुक बांटे, हराम रिस्क से ना बांटे। ये शैतान हमें अजादारी में भी बहकाता रहेगा। जब नमाज में बहकाता है, जन्नत के आदम को बहका सकता है, अजादारी में भी बहका। तो मुतवज्जे रहे कि हम अहले बैत से नजदीक हो इन दिनों में, दूर ना हो। इसी तरह से सात और आठ की तारीख है, सात आठ की तारीख है करबला के वाकयात में कुछ ऐसी चीजें आ गई जिसको हम कहते रहते हैं कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है करबला से, तहरीफात हुई है करबला के वाकयात। हर कौम ने, हर जज्बे ने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक करबला को ढाला। ساری بات پر ہم آج ہی حضرت علی اکبر کا ذکر کریں. مرثیوں میں چہرے کا بھی ذکر ہے اور نہیں معلوم اور کتنی چیزوں کا ذکر آ جاتا ہے. یہ سب جذبات تھے انسانوں میں. ہر قوم نے اپنی کلچر کو اپنی چیزوں کو کربلا سے تعلق دینے کی کوشش کی. 7 تاریخ کو مہندی حضرت کا مہندی کا کوئی تصور وہاں نہیں تھا. انشاءاللہ 7 کو میں ذکر کروں گی حضرت قاسم کی زندگی میں کیا کیا تھا اور کیا نہیں تھا, کربلا میں کیا تھا اور اب کیا ہے. مہندیاں, چوڑیاں, دوپٹے, پتہ نہیں کیا کیا. اللہ کا شکر ہے کہ میں صرف سنتی ہوں, دیکھتی نہیں. اگر دیکھ بھی رہی ہوتی تو خون کے آنسوں میں رو رہی, کیونکہ ہمیں ایسے لوگ بلا لیتے جن کو چوڑیاں اور مہندیاں اور نہیں معلوم کیا کچھ بانٹنے ہیں. نظر و نیاز اپنے اپنے رنگ اور ڈھنگ کے ہم نے نکال دی. 7-8 تاریخ کو آپ جو آئیں گے وہ دیکھیے گا یہاں پہ تعداد کتنی کم ہو جائے گی. نظر و نیاز کا سلسلہ اس حد تک, اور اس میں بھی فلا چیز بھی بنے اور یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو, ہر گھر میں کوکنگ ہو رہی, اور رشتے دار جب بیٹھتے ہیں ساتھ میں تو پھر ہلا گلا بھی ہو, باتیں بھی آپ خاندانی کر رہے ہو. دیکھا ہم نے, یہ تو ہم نے دیکھا کہ کیا ہوتا ہے 8 تاریخ کو اور 7 تاریخ کو. لوگ غم نہیں منا رہے ہوتے, لوگ گیدرنگ منا رہے ہیں. اب اس وقت نعوذ باللہ فرض ادا اور اداداری کو غم زدہ کرنے کے بجائے, ماں کو پرسہ, بیوی کو پرسہ دینے کے بجائے آپ رشتے داریاں نبھا رہے ہیں. پلا نبھا کو تو ضرور جنا لیں, اس سے ہماری یہ رشتے داری. امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دے بیوی کو, ان کے فرزند کا پرسہ دے. تھوڑا سا اشارہ کیا اور آج بھی آپ سے یہی, جو ہم نے اپنی عزاداریوں کو تقسیم کر لیا ہے. گھر گھر عزاداری اس زمانے میں تھی جب امام بارگاہ نہیں ہوتے, ہندوؤں کے ساتھ مسلمان رہتے, ان کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں تھی کہ وہ اپنا کوئی مرکز قائم کرتے. مسلمانوں کی تعداد کم تھی, لوگ دور دور رہا کرتے تھے. جب انہوں نے اپنے اپنے گھروں پر امام بارگاہ بنایا, ہم اگر اتنا کوئی مرکز نہیں بنا سکتے اپنے گھر میں پڑھ کے ادا بھی سکتے, اس وقت تو بہت اچھی بات تھی. لیکن جب یہ گھر گھر اداداری اتنی کثرت پا جاتی ہے, پہلا اچرا ہے ہر گھر میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے, 3 لوگ بیٹھے ہوئے, 4 لوگ بیٹھے ہوئے, پڑھنے والے ہیں نہیں, بھائی تم بھی پڑھ لو, تم بھی پڑھ لو, تم بھی پڑھ لو, ہر ایک کو پڑھنے کے لیے بٹھا دیں. پڑھنے والوں کی قلت آتا ہی نہیں, کسی کو علم آپ بنا ہی رہے ذاکرائے, وہاں تو نہیں بن رہے جہاں سے آنے چاہیے. خود سابقہ ذاکرائے جن کو نہ عربی پڑھنی آتی نہ اردو پڑھنی آتی, کتاب سے دیکھ کر پڑھ لو, اس کو بٹھا دو, اس کو بٹھا دو, خود ہی ہم ماتم کر لیتے. ذاکری کے لیے ہم میں خود ذاکری کورس کرواتے, جس میں 14 نکات پہلے دن لڑکیوں کو بتاتا. اس میں میں ایک بات بھی ضرور کہتی ہوں, دیکھو کس لیے ذاکرہ بنتا, خدا کے لیے آپ کی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. ہمارے گھر میں عزاداری ہوتی ہے, ہم ذاکرہ اس لیے بن رہے ہیں, ہماری دادی کی خواہش ہے ذاکرہ بنتا. گھر میں پڑھنے والا نہیں ہے, گھر میں سے ذاکرہ نکل آئے گی, اس لیے ذاکرہ نہیں بنے گی. ہمارے گھر کی عزاداری کون سنبھال, اس لیے ذاکرہ بنے گا آپ کے نزدیک ذاکری کی اہمیت ہونی چاہیے. کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو پھیلانا, ہر چیز میں اگر ہم ڈیپتھ میں جا کر دیکھ لیں تو ہمیں رونا. نیت پڑھنے والوں کی بھی, ذاکری سیکھنے والوں کی بھی اور سکھوانے والوں کی بھی, بزرگوں کی کیا ہے, ہمارے گھر کی عزاداری چل پڑے. گھروں میں عزاداری کو آباد کرنے کے لیے جو جھگڑے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, وہ بھی معلوم ہے آپ سب کو معلوم. جب 25-25 اشرے 20-20 اشرے ایک محلے میں ہوتے ہیں, مجرے کو کیسے گھسیٹا جاتا ہے, نماز کے وقت کی اہمیت کیوں نہیں ہوتی. مجرے سے اتنی زیادہ ہے کہ نماز پڑھ لیں گے تو ایک گھر کا اضافانہ نکل جائے, ان کی مجلس کس وقت ہوگی. اس لیے ان کی مجلس کرنا بھی ضروری, وہ ان کے یہاں نہیں کریں گے تو وہ ہمارے یہاں نہیں آئے. یہ باتیں بالکل روزے روشن کی طرح آیا ہے, میں نے خود نہیں بنائی تھی, آپ دیکھ رہی ہیں روزانہ آپ کے محلے میں, بلاک 19 میں ہماری طرف, میں بلاک 13-14 میں رہتی ہوں, وہاں پر 2 گروپس ہو گئے, ادھر والا ادھر والا, کیونکہ اتنی زیادہ مجلس ہے کہ سب تو جا ہی نہیں سکتے, لڑائیاں ہوتی ہیں باقاعدہ, ہر روز لڑتے ہیں, ہمارے یہاں 4 نوئے نہیں ہوئے, تمہارے یہاں 4 نوئے ہو گئے, وہی مرثیہ روز پڑھا جاتا, روز ریپیٹ ہوتا ہے. اور کس چیز کی اہمیت سب سے کم ہے, ذکر نہیں بتایا نہیں جائے گا کربلا میں ہوا کیا. سب سے کم اہمیت چیز یہ کہ مجلس حدیث نہ ہو, जिक्र ना हो, करबला के वास्ते बयान ना हो, मर्सियां पढ़ा से मैं नहीं कह रही मर्सी वाचन की अहमियत नहीं है, कि कसरत मजालिस से मराकिब को खत्म कर। इस अजा खाने में पिछले साल तो मजलिस हुई, अभी भी साइबर जोन में आप चले जाइए वहां पर भी जनानी मजलिस नहीं होती। कितने अजा खाने ऐसे, कितने मामबार ऐसे जहां पर जनानी मजालिस नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि खवातीन तैयार नहीं है जनानी मजालिस में, उनको घरों में मजलिस करनी होती है। घर में अजा खाना है, अगर आपके घर में अजा खाना था, जरूरी नहीं है कि आप उसको हमेशा के लिए सारी उम्र के लिए कायम भी रखें। दो लोगों में बैठकर वहां पर आप पढ़े, अगर अजा खाना है, हम समझते हमारी अकल में आ गई एक बार कि कसरत मजालिस मयार नहीं, मजालिस की कसरत हर घर घर में हो, मजलिस की क्वालिटी मयार, मजलिस में क्या पढ़ा जा रहा है ये मयार, मजलिस कितना फायदा दे रही है, मजलिस की अफादियत क्या है, मजलिस से लोगों की कितनी तरबियत हो रही है, लोग कितना दीन को समझ रहे, कितना इस्लाम के नजदीक आ रहे हैं, ये बात अहमियत की मांग। आप अपना अजा खाना इमाम बारगाह में आकर मुंसलिक कर सकते, इमाम बारगाह से बता सकते कि हम यहाँ पर अपनी मजलिस करेंगे, मिलकर करेंगे, जितना इज्तमा बड़ा हो, जितनी अजादारी में बरकत होगी, जितने लोग फायदा उठाएंगे उतना ज्यादा फायदा, जितने लोग ज्यादा मुस्तफीद होंगे उतनी बेहतरी है। इसलिए इस नुकते के ऊपर जरूर गौर फिक्र कीजिएगा कि हम अपना ये जहन कदामत से चलता आ रहा है, हमारे आबाओ अजदाद का है, हमारी दादी का है, हमारी नानी का है, हमारी सास का है, इस्लाम उन सब बातों की अहमियत का कायल। इस्लाम कहता है हक बात समझो, हक से ऊपर समझो। खवातीन अपनी इस अजादारी को, अपने घर को बेहतर करने की भरपूर कोशिश करें। अगर ये अजादारी हमारे घरों को बेहतर कर रही, हमारे जहन को बेहतर कर रही, तो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के तकाजे पूरे करें। कल की मजलिस में तरबियत के हवाले से बच्चों की गुफ्तगू हुई थी, और ये भी आपको बताया इस काम का अजर कितना ज्यादा है, इस काम की फजीलत कितनी ज्यादा है। आज की मजलिस में भी माँ के हवाले से बात करूंगी कि माँ जब तरबियत करती है तो उसे सोचना चाहिए कि हमें अहले बैत में क्या पता है, हमारे काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, अपने बच्चों की तरबियत भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अहले बैत ने तरबियत का एक उसूल बताया, बच्चों की तरबियत कैसे करनी, बच्चों की तरबियत के लिए हमें जो उसूल बताया है छठे इमाम मामे जाफर साहब ने बताया, इमाम ने फरमाया बच्चा 7 साल तक बादशाह, मामले का 7 साल तक बच्चा बादशाह, बादशाह का लफ्ज समझ ताकि हम और आप समझ, बादशाह क्या होता है जिसकी मर्जी चलती है, 7 साल तक बच्चे की मर्जी के मुताबिक माँ अमल कर सकते। इस मसले में लोग कहते हैं हम बच्चे की मर्जी पे चलेंगे, बच्चे की बात मानेंगे, बच्चा जिद्दी हो जाएगा, बच्चा नालायक हो जाएगा, बच्चा खराब हो जाएगा। ठीक है, आप बच्चे से जब अपनी मर्जी मनवा रहे उसकी रजायत के साथ मनवाए, उसको पहले राजी करें अपनी मर्जी पे, फिर आप बात सुनवाया। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बच्चे की बात मानने से बच्चा बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो हदीस है इमाम है हमें वैसे सोचना है। इमाम कह रहे बच्चे को 7 साल तक बादशाह बनाओ, हम कह रहे नहीं, हम अपनी मर्जी चलाएं, हम उसकी मर्जी चलाएंगे तो वो जिद्दी हो जाए। 7 साल तक बच्चा बादशाह और फिर दूसरे साथ 7 साल से 14 साल तक बच्चा गुलाम, बच्चे से हम अपनी मर्जी करवा सकते। हमें चाहिए हम बच्चे को कहें कि ये काम करो तो वो काम करे। अगर 7 साल तक बच्चे ने बादशाही की जिंदगी गुजारी है तो उसकी जिदें, उसकी रूहानी खलिशें, उसकी रूहानी उतूफतें उस हद तक पहुंच जाती हैं कि वो चिड़चिड़ा, जिद्दी और बदतमीज किस्म का बच्चा नहीं होता, क्योंकि उसको मोहब्बत मिली हुई है, उसको तवज्जो मिली हुई है, उसने बहुत कुछ ले लिया, अब वो देने की पोजीशन में भी आ जाए। फिर 7 साल से लेकर 14 साल तक जब वो गुलाम है तो अब ये तरबियत उसको कैसे बैठना है, कैसे खाना है, किस तरह से बात करनी है, यहां तक के जब 14 साल का बच्चा हो गया अब ये मुशीर, वालदेन के लिए मुआवन और मुशीर, जिससे हम मशवरा कर सकते। मशवरा लीजिए अपने बच्चों के जो 14 साल के हो गए, कि क्या करना चाहिए, किस तरह से काम करने चाहिए, उनसे भी मशवरा लें ताकि वो सोचने की, इंटरेस्ट लेने की आदत पैदा करें घर के उमूर में। बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं जिनको घर के उमूर में कोई तवज्जो नहीं होती, दिलचस्पी नहीं होती। इसकी वजह क्या है? क्योंकि घर में कभी उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली होती, अपने माँ बाप के घर में कभी उन्होंने सोचा ही नहीं होता यहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किस तरह से काम कर, उनको पता ही नहीं होता, कुछ भी नहीं पता। आपका बच्चा जब 14 साल का हो गया, कुछ अरसे बाद उसने अपना घर संभाल लिया, कुछ अरसे के बाद उसने अपनी जिंदगी चला ली। 14 साल की लड़की है, चंद सालों के बाद खुद माँ बन जाएगी, खुद बीवी बन जाएगी, उसको अपना घर चला। अगर घर के माँ बाप के घर में उसको कुछ समझाया नहीं गया, कुछ मशवरा नहीं लिया गया, उसकी तवज्जो नहीं दिलाई, उसको जिम्मेदार नहीं बनाया, तो कैसे घर चलाए? इसलिए 14 साल के बाद से बच्चों को शख्सियत, उनको अहमियत, उनकी जिंदगी में दिलचस्पी को कायम करें। और बहुत अफसोस हमारी सोसाइटी में इस चीज में ना बच्चों से लेते हैं, बच्चे तो दूर की बात, जो बहुएं आती हैं, जो बड़ी होकर पल पोस के आती है, उनसे भी मशवरा नहीं लिया जाता। और इसके पीछे हिकमत ये होती है कि मशवरा देंगे अगर बच्चों से पूछेंगे, बहू से पूछेंगे, सर पर चढ़ जाएंगे। हमारा हुक्म चलना चाहिए, हमारी बात होनी चाहिए, जो हम कहते जाए करती जाए। कनीज और गुलाम की तरह ये जवान बच्चे और ये लड़कियां, जवान लड़कियां जो बहू बन चुकी हैं, वो भी ऐसे ही रहे घर। फिर क्या होता है, जब सास ने नहीं पूछा कि भाई खाना कैसे पकता है, तुम कैसे पकाती, तुम्हारे घर में क्या तरीका था, या मिसाल के तौर पर रखने का घर में चीजें क्या अंदाज है, जैसा वो चाहती है वैसे रख ले, कौन सा कलर पसंद है, क्या चीज अच्छी लगती है, तुम्हें क्या खाना पसंद है, क्या तरीका है, ये सारी चीजें अगर हम मशवरा नहीं करते अपनी बहुओं से, अपनी बेटियों से, अपने बेटों से, उनकी दिलचस्पी अपने घर में से खत्म हो, वो फिर एक अपनी जिंदगी अलहदा कायम करके बैठा। इसी तरह से जो जवान है उनको बुजुर्गों का एहतराम ऐसी कर, जवानों को बुजुर्गों से मशवरा लेना चाहिए। ये दो तरफा है, ताली हमेशा दो हाथ से बजे, दो तरफा रिश्ता है। खवातीन से मैं मुसलसल ये कह रही हूँ, सबसे ज्यादा हम औरतों के आपस के रिश्ते जो है उनमें आप इंतजाम और इस्तेहकाम पैदा करें, वो बहुत मजबूत होने चाहिए। अगर एक साथ वो एक घर में अच्छे तरीके से रह सकती है, उस घर का मर्द भी सुकून से है। जो मर्द सुबह अपनी बीवी और अपनी माँ की लड़ाई देखकर जाता है, जब रात को आता है तो बीवी कुछ सुनाती है और माँ कुछ सुना रही हो, इस मर्द का दिल तक लगेगा घर घर में, दिल लगेगा ही नहीं घर, दिल होता उस वक्त है घर में जब घर में इंसान को सुकून मिले। मर्द उस वक्त घर में आते हैं जब घर उनकी पनाहगाह, घर उनके लिए माये सुकून। जब घर की औरतें भाभी और मन धर्म लड़ती रहे, इनके अंदर मोहब्बत नहीं, मर्द भी ये देख रहे हैं, हमारे बच्चे भी ये देख रहे हैं, बच्चे भी क्या देख रहे हैं, सुबह उठते हैं तो दादी की और माँ की लड़ाइयां, झगड़े, ताने, पिछले दूसरे के नुक्ताचीनी, अगर ये सब कुछ घरों में होगा तो वो बच्चे जो बासलाहियत टैलेंटेड बच्चे चाहिए, इमाम जमाना के सिपाही टैलेंटेड, इमाम जमाना के सिपाही शुजाओ, इमाम जमाना के सिपाही खुद एतमाद, इमाम जमाना के सिपाही दुनियावी तालीम में भी आ गए, इमाम जमाना के सिपाही दीनी तालीम में भी आ गए, इमाम जमाना के सिपाही दूसरों का हाथ पकड़ने वाले हो, मुआशरे में एक फ़ाल किरदार अदा करने वाले। घरों में माएँ ऐसी होंगी तो बच्चे जवान कैसे ऐसे कर, खातन खत्म हो रहा है आज, मैं सुलानी होगी घर की तरह से। अब माजरत चाहती हूँ आपसे, उस मसाइल की तरफ आऊंगी। एक छोटा सा बात, जो हम यहाँ पर आकर बैठे हैं, इसकी कितनी अहमियत, कितनी ग्राम, हर एक चीज आप लोग यहाँ लेने आ रहे हैं, कितनी चीज यहाँ लेने आ रही। एक शख्स था छठे इमाम के पास अपने फख्र की शिकायत लेकर आया, कहा मौला मैं फकीर हूं मुझे कुछ अता करो। इमाम ने कहा कि जो चीज तुम्हारे पास है वो इतनी कीमती है कि तुम हर चीज से बेनियाज। उसने कहा मौला क्या चीज? इमाम ने कहा कि अगर मैं तुमसे कहूं कि जमीन और आसमान के दरमियान, तरफ सोचिए कि इमाम ने क्या कहा, जमीन और आसमान के दरमियान जितना कुछ है वो सब चांदी से भर जाए, जितनी स्पेस जितनी जगह है सब चांदी से भर, और वो सारी चांदी मैं तुम्हें दे दूं, और जो तुम्हारे दिल में मोहब्बत है अहले बैत है, हमारी मोहब्बत है, और तुम दिल से बाहर निकाल, क्या तुम राजी हो जाओ? सिखा मौला, चांदी क्या अगर सोने से भी ये सारी जगह भर जाए तो मैं आपकी मोहब्बत दिल से नहीं निकाल। इमाम ने फरमाया, बस तुम्हारे से ज्यादा तवांगर, तुम्हारे से ज्यादा कुदरतमंद, तुम्हारे से ज्यादा अमीर कोई नहीं। गरीब और फकीर नादार तो वो होता है जिसके दिल में हमारी मोहब्बत, तो बेनियाज हकीकत है अगर अहले बैत के दर से वाबस्ता है तो हमारे लिए तो बाकी चीजें अहमियत नहीं रखनी चाहिए। माल, दुनिया की मोहब्बत, अहले बैत का दर हमारे पास इतना कवि दर है जो हमें हर रोज एनर्जी दे रहे, हर रोज ताकत दे रहे। आप ये दुआएं पढ़ना शुरू करें, जरूर पढ़ें और देखिए आपकी जिंदगी में तब्दीली आ रही। नमाज पढ़ना शुरू करें, पाबंदी से पढ़ें और देखिए आपकी जिंदगी में तब्दीली आती है कि नहीं आती, यकीन न आएगी। तवज्जो के साथ और इल्म के साथ कैसे नमाज पढ़ना, जहादत के साथ वुज़ू कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़ना, आएगी अहले बैत से मोहब्बत करके देखें। पर चेहरा पर जब बैठे तो खुद से नियत के साथ बैठे और कुर्सा दे उसे नियत के साथ। जनाब सैयद आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फातिमा जो आंख हुसैन के गम में गिरिया करेगी वो कयामत के दिन जिस दिन आंखें रो रही हैं, आंखों की कसरत और निदामत की वजह से आंखें कयामत से रोएंगी, लेकिन वो आंख उस दिन रो नहीं हुई, वो आंख उस दिन पश्चिमान, वो चेहरे हुसैन के सामने गिरिया करते हैं, वो चेहरे उस दिन जब निदामत का दिन होगा, पश्चिमानी का दिन होगा, खुशहाल और मसरूर होंगे। अल्लाह ताला हमें क़यामत के रोज आलिमा के सामने, बीबी सैयदा के सामने मसरूर करें, उनकी शफाअत हमें नसीब। बीबी आज हम आपके पोते का पुस्तक वो अली अकबर जो 18 साल का कंजर, वो अली अकबर जिसको लोग मदीने की गलियों में अपनी छतों के ऊपर जाकर देखा करते, जिसके दीदार के लिए लोग तड़पा करते, वो अली अकबर जो इमाम हुसैन के दिल की ठंडक, जिसको मौला देखकर अपने जंगों को अपने जन को याद किया करते। अजादारों हम आज उस जमान का गुस्सा देने आते, मौलान की मोहब्बत बहुत अजीब होती है, इस मोहब्बत को वही लोग समझ सकते हैं जो साहिब औलाद, और अल्लाह की मोहब्बत से हर सिर में अजीब कैफियत है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ के अलहदा तरह के अरमान हो, जब बच्चा जवान हो जाता है तो माओं के और बापों के दिल में उमंग उठती है, या कुछ सालों के बाद ये जवान शादी का घर में बहु आई, इसका अल्लाह कर्बला की कैसी माए जो अपने बच्चों जिंदगी के बजाय मौत की मुआयदा, जो कुर्बानी के लिए बच्चों को तैयार कर रही है, सब आशूर आ गए हैं, सब बच्चे तैयार हो रहे हैं, जवान अपने तलवारें तेज कर रहे हैं। अली अकबर वो जवान है जिनके बारे में तारीख से लिखा है सबसे देर में अली अकबर खेमे से बाहर निकले, इमाम हुसैन ने अली अकबर को ऐसे तैयार किया था जैसे किसी दूल्हा को तैयार किया जाता है, मौला ने सर के ऊपर अमामा रखा, तहतुल खदम को सरों पर लटकाया, अब आए रसूल को दोषी अली अकबर पर डाला, और अली अकबर जब खेमे से निकलते थे बार बार पड़ता उठता था गिरता, हमारा दिल कहता है कभी बीबी फातिमा कुबरा ने घेर लिया होगा भाई से रुख्सत आते, कभी सकीना ने दामन पकड़ लिया होगा ज़ैनब के लाडले अली अकबर, कभी ज़ैनब ने सीने से लगाया होगा अली अकबर को, इमाम ने हसरत की निगाह से देखा रसूल की निशान, अली अकबर को घोड़े पर सवार कर रहे, और ये वाहिद शहादत जिसके ऊपर इमाम ने इस तरह फरियाद करके दुआ मांगी, दोनों हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार मैं कहूंगी मौला तेरा खुदा बना रहे, क्योंकि जान से कोई ऐसा वफादार नहीं, खुदाया दवा है ना उसको बख्तर की जान भेज रहा हूँ, जो रफ्तार में गुफ्तार भी है, तीरत में सूरत में हर लिहाज में कमी है, पैगंबर इमाम अली लेकिन क्या सोचते हैं कि बाबा के कदमों की चापे आ गई, चापों की सदाएं सदाएं हुसैन अली अकबर के कांधे पड़ी। पलट कर बाबा मेरे पीछे पीछे क्यों कर्बला में बीमार थे, कुल मरीजों को हाजरी ने महफिल के मरीजों को शिफाए काबिल फरमा। जिन लोगों ने तमाम से दुआ कही है खुदाया उनके बीमारों को शिफाए काबिल नायक फरमा। जो मुमकिन मुमनान हज ज़ियारत के मुश्ताक मदीना शाह मैदान की ज़ियारत से परवरदिगारा हक मोहम्मद मोहम्मद जितने मोमिन उमरा दीन के खदमात में मसरूफ हैं, जो लोग अज़ादारी में मसरूफ हैं उनकी तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमा। जो जो मोमिन उमरा जहाँ कहीं भी अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे मसरूफ हैं उनकी तमाम इबादतों को कबूल फरमा। परवरदिगार अब हक मोहम्मद वाले मोहम्मद इमाम ज़माना की ज़ुहूर में ताजील फरमा। खुदावंदा जब इमाम तशरीफ़ लाए और आज भी इमाम हमें पुकारते हमें इमाम के साथियों में शामिल करते हैं। परवरदिगार जब इमाम तशरीफ़ लाए तो हमें इतना जज्बा ایمانی عطا فرما کے اپنی اولاد کو ان سے قرب مند کر دے، ہمارے جوانوں کو اکبر اور محمد جیسے جذبات عطا فرما، پروردگار اگر ہم سے محمد والے محمد ہمیں ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے ماں کی ظہور میں تعجیب ہو، ان کاموں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے ماں کی ظہور میں تاخیر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع.